ूतम परिजनासहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के नित्य सत्रों के 26वें सत्र में। चर्चा हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पहले दो अध्याय जो हमें संपूर्ण शेष लीला का सारांश बताते हैं। उसके पश्चात अध्याय तीसरा महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात अद्वैताचार्य इनके यहाँ पर छलपूर्वक नित्यानंद प्रभु द्वारा लिए जाते हैं। उसके पश्चात महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होते हैं अपनी माँ के आज्ञा को शिरोधार रखते हुए। और अध्याय चौथा माधवेंद्रपुरी इनकी भक्ति का गुणगान गोपाल जी का प्राकट्य और खीरचोर गोपीनाथ इनका वृत्तांत। अध्याय पांचवा साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत। अध्याय छठा सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार। अध्याय सातवा महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए जाना सारे भक्तों का आशीर्वाद लेकर और वासुदेव इनका उद्धार। अध्याय आठवा विद्यानगर में रामानंद राय से मिलना और रामानंद राय संवाद। अध्याय नौवा संपूर्ण दक्षिण भ्रमण महाप्रभु का और जगन्नाथपुरी वापस आना। अध्याय दसवा सारे भक्त महाप्रभु से आके उनका मिलन। अध्याय ग्यारह बंगाल से भी भक्तों का आके महाप्रभु से मिलना और बेड़ा संकीर्तन। अध्याय बारह गुंडीचा मंदिर मार्जन। अध्याय तेरह जगन्नाथ रथ यात्रा। अध्याय चौदह हेरा पंचमी महोत्सव। अध्याय पंद्रह सारे बंगाल के भक्तों का पुनः लौट जाना और महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य इनके यहाँ पे प्रसाद लेना और अमोघ उनका जामाता उसका उद्धार। अध्याय सोलह महाप्रभु का वृंदावन जाने का दूसरा प्रयास लेकिन रूप सनातन इनको मिलके उनकी आज्ञा को सुनके पुनः कन्हैयाशाला से पुरी की ओर प्रस्थान। अध्याय सत्रह महाप्रभु का तीसरा प्रयास वृंदावन जाने का झारखंड से जाना और वृंदावन पहुंचना वृंदावन गमन। अध्याय अठारह महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण। अध्याय उन्नीस महाप्रभु का वृंदावन से प्रयाग में जाना प्रयाग में रहना और रूप गोस्वामी इनका महाप्रभु को प्रयाग में मिलना और महाप्रभु का रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करना। यह हो गया अध्याय उन्नीस। अध्याय बीस महाप्रभु वाराणसी में जाना और सनातन गोस्वामी इनसे मिलना और संबंध ज्ञान के बारे में जानकारी देना। अध्याय इक्कीस वो भी संबंध ज्ञान की जानकारी सनातन गोस्वामी को देते हैं लेकिन उसमें भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य इसका वर्णन। अध्याय 22 जो हमने कल चर्चा की वो है अभिदेय, जो संबंध अभिदेय और प्रयोजन इन तीन वस्तुओं की जो हम चर्चा करते हैं। तो 20 और 21वें अध्याय में संबंध ज्ञान दिया है। 22 कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान का जो विस्तार होता है अपनी शक्ति का स्वयं जो विस्तार होता है वो दो भागों में होता है, एक है स्वांश और दूसरा है विभिन्नांश। स्वांश में भगवान के नारायण आदि और अन्य सारे अवतार वो आते हैं, और विभिन्नांश में जीवात्मा आते हैं। और जो जीवात्मा है उनके भी दो प्रकार होते हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जो जीव है वो हमेशा कृष्ण के से सन्मुख रहते हैं और उनकी प्रेम से सेवा में रत रहते हैं। नित्य बद्ध जो भगवान से विमुख रहते हैं और माया के द्वारा दंडित इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। और इस माया से बाहर निकलने के लिए कई साधन होते हैं, ज्ञान का साधन है, योग का साधन है, कर्म एक साधन है, लेकिन सर्वोपरि साधन महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति। और ये अन्य सारे साधन तभी फलित होते हैं जब भक्ति का वो सहारा लेते हैं। और इस प्रकार से भक्ति भी जो है वो हमने देखा कि दो प्रकार की होती है, साधना भक्ति प्रमुख रूप से, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति के भी महाप्रभु ने कई सारे जो 64 अंग है उनके बारे में चर्चा की, और रागानुगा साधना भक्ति उसके भी लक्षण महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी इनको बतलाया। तो इसके पश्चात अभी आज महाप्रभु हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं अध्याय 23, जिसका शीर्षक है जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम। इसका अर्थ है महाप्रभु अभी प्रयोजन की शिक्षा सनातन जी को देने वाले हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से जो है वो संबंध के बारे में महाप्रभु ने ज्ञान दे दिया है। एबे शुनी भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, यहार श्रवणे होय भक्ति रस ज्ञान। संबंध का अभी बात हो गया है, अभी सुनो भक्ति का फल क्या है, प्रयोजन क्या होता है उसके बारे में सुनो। यहार श्रवणे होय भक्ति रस ज्ञान, भक्ति रसों का, जो भक्ति का रस है उसके सारे रसों का ज्ञान एक व्यक्ति को हो जाएगा जब कोई ये प्रेम फल के बारे में सुनता है। तो सर्वप्रथम महाप्रभु जो है वो भाव भक्ति के बारे में बताते हैं और उसके पश्चात प्रेम के बारे में बताएंगे। भाव और प्रेम में क्या अंतर होता है? भाव को माना जाता है कि कृष्ण प्रेम का उदय हो रहा है। तो जैसे सूर्य का उदय जब होता है तो उस समय जो 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 आभा और जो प्रकाश होता है उसे कहते हैं भाव। और प्रेम मतलब संपूर्ण सूर्य जो दोपहर का 12 बजे के हमारे माथे के ऊपर दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रेम। तो भाव को प्रेम का अंकुर भी माना जाता है और उसका उदय भी माना जाता है। तो सर्वप्रथम महाप्रभु इस भाव के बारे में बताएंगे और उसके पश्चात प्रेम के बारे में बताएंगे। कृष्ण रति गाढ़ है लय प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसे रे ए स्थाई भाव नाम। जब भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो स्नेह है, हमारी प्रीति जो है वो गाढ़ी बन जाती है, उसे जो है वो स्थाई भाव नाम से जाना जाता है, वो होती है भाव भक्ति। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, ये उसका प्रमुख लक्षण होता है। और उसकी परिभाषा भी बताते हैं महाप्रभु भाव भक्ति की। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु श्याम भाक रुचि भिश्चित्तमश्रुण्य कृद असौ भाव उच्चते। किसको भाव कहा जाता है? भाव उच्चते, इसे भाव कहा जाता है। किसे? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, जो शुद्ध स्तर पर की जाती है। प्रेम सूर्यांशु श्याम भाग, और जो है वो सूर्य के समान जिसकी किरणें होती है। रुचि भिश्चित्त मसरुण्य, और जो जो आस्वादन इस प्रकार से भक्ति का होता है कि मसरुण्य कृत, इसका अर्थ है हृदय को कोमल करती है ये भक्ति, इसे जो है वो भाव स्तर की भक्ति कहा जाता है। और यहां पर महाप्रभु बताते हैं कि ये जो भाव है इसके मैंने यहां पर आपको स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों बताए हैं। स्वरूप लक्षण है शुद्ध सत्व विशेषात्मा, इसे कहते हैं स्वरूप लक्षण, मतलब जो शुद्ध स्तर पर की जाती है वो है इसका स्वरूप लक्षण। और इसका तटस्थ लक्षण है कि चित्तमश्रुण्य, जो हमारे हृदय को भक्ति के रसों के आस्वादनों से कोमल बना देती है उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। और अभी महाप्रभु प्रेम की परिभाषा बताते हैं। ये तो हो गया भाव, इसके पश्चात प्रेम क्या है। सम्यमश्रुणित स्वांतो ममत्व अतिशय अंकितः भावः स एव सान्द्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। बुध बुधई प्रेमा निगद्यते, बुध यानी बुद्धिमान लोग इसे प्रेम कहते हैं। किसे? सम्यक मसरूणिकत स्वांत, जिनका हृदय पूर्णतया कोमल बन गया है, और ममत्व अतिशय आश अंकित, जो ममत्व की भावना है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे है, वो भावना बिल्कुल प्रगाढ़ बन जाती है, उसे जो है प्रेम कहा जाता है। तो ये प्रेम का परिभाषा महाप्रभु सुनाते हैं। और ये जो हमारा प्रेम तक पहुंचने का प्रवास है, ये शुरू होता है श्रद्धा से। तो महाप्रभु अभी श्रद्धा से प्रेम तक जो हमारा प्रवास है उसके बारे में वर्णन करते हैं। कोन भाग्ये कोन जीवेर श्रद्धा यदि होय तबे से जीव साधु संगये करय। तो सबसे पहले श्रद्धा, उसके पश्चात दूसरा स्तर होता है साधु संग। हमारे अंदर पहले श्रद्धा उपज लेती है, जन्म लेती है, और श्रद्धा से फिर हम लोग भगवान के भक्तों का संग करना प्रारंभ कर देते हैं। संग करते हैं तो संग में क्या होता है, साधारण सा संग से हमारी भजन क्रिया यानी श्रवण कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। साधु संग होते होय श्रवण कीर्तन साधन भक्ते होय सर्व अनर्थ निवर्तन। फिर उसके पश्चात साधु संग में हम लोग श्रवण कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं, जिसे हम लोग भजन क्रिया कहते हैं, और उसके पश्चात सारे अनर्थ हमारे काम क्रोध लोभ मद मोह अहं मत्सर इनका निवर्तन इनका विनाश होता है। अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात हम और ऊपर के स्तर पर चले जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति होइले भक्ति निष्ठा होय, निष्ठा है ते श्रवणाद्य रुचि उपजय। निष्ठा प्राप्त होती है सारे अनर्थों जाने के पश्चात, और निष्ठा के पश्चात जो भजन क्रिया हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि है ते भक्ति होय आसक्ति प्रचुर, आसक्ति है ते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रत्यंकुर। और रुचि के पश्चात आसक्ति, और आसक्ति के पश्चात कृष्ण प्रीति का कृष्ण प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, सही भाव गाढ़ होइले धरे प्रेम नाम। फिर आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद जो है वो प्रेम। सही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम, सारे आनंदों का धाम जो है वो है ये भगवत प्रेम, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रादुर्भावे भवेत कर्मः, ये सब कर्म पूर्वक होता है। कोई भी इसलिए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी को इस प्रकार से छलांग नहीं लगाने चाहिए, और आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑफ प्रेम कि मैं अभी प्रेम के स्तर पर पहुंच गया हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्रम से ही क्रम से ही आगे चला जाता है। जैसे हम लोग जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं किसी घर पर जाने के लिए, 9 सीढ़ियां हैं तो हम लोग 1 से 9 तक डायरेक्ट जंप नहीं छलांग नहीं लगा सकते, तो हमें जो है वो एक एक करके सीढ़ी से जाना होगा। तो इसी प्रकार से श्रद्धा से प्रेम तक ये 9 जो है वो स्टेप्स कहे गए हैं। और महाप्रभु श्रीमद भागवत का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं, 3रे स्कंद का कपिल मुनि का उपदेश, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ये क्रम से होता है, श्रद्धा से रति तक जो है वो धीरे 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 गाड़ी भक्ति में आगे बढ़ती है। और ये जो भाव भक्ति है उसके महाप्रभु लक्षण सुनाते हैं। भाव भक्ति के 9 लक्षण होते हैं। क्या है ये 9 लक्षण? शांतिर अव्यर्थ कालत्व विरक्तिर मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्यु जात भावांकुरे जने। जिस व्यक्ति में भाव उत्पन्न हो गया है, भाव का अर्थ है भगवान के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, उसमें ये 9 लक्षण पाए जाते हैं। तो ये 9 लक्षण यदि है तो उस व्यक्ति को भाव के स्तर पे है, ऐसा हमने समझना चाहिए। ये 18वां और 19वां श्लोक है मध्यलीला का अध्याय 23, इसमें भाव भक्ति के 9 लक्षण बताते हैं। तो सबसे पहला क्या है, शांति ही, वो भक्त क्षमाशील होता है। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम, वो बिल्कुल अपना समय यहां वहां नहीं गंवाता, व्यर्थ नहीं गंवाता। तीसरा है विरक्ति, उसके मन में वैराग्य प्रधान होता है। चौथा है मान शून्यता, बिल्कुल उसके अंदर अभिमान नहीं होता है, वो दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं रखता। आशा बंध 5वां गुण है, आशा बंध करता है कि वो हमेशा आशा पूर्ण रहता है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। समुत्कंठा, वो उत्साह के साथ भक्ति में लगा रहता है। और नाम गाने सदा रुचि ही। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन करने में उसे सदैव रुचि का अनुभव होता है, ये है नाम गाने सदा रुचि। तो हमारे सात अंग हो गए। आठवां है आसक्ति स्तद गुणाख्याने, भगवान के गुणों का बखान करने में, गुणगान करने में, सुनने में उनकी आसक्ति होती है। और नौवां है प्रीति स्तद वसति स्थले, जहां पर भगवान ने कुछ लीलाएं की हैं, निवास किया है ऐसे धाम, वहां पर रहने में उसे प्रीति का अनुभव होता है, वहां पे वो रहना पसंद करता है। एई नव प्रत्यंकुर यार चित्ते होए, प्राकृत क्षोभेता रक्षोभना ही होए। ये नौ जब भाव के लक्षण किसी भक्त में प्रकट हो जाते हैं, तो प्रकृति द्वारा कितना भी वह व्यक्ति विक्षोभित किया जाएगा, तभी भी वह विक्षोभित नहीं हो सकता। ये महाप्रभु ने भाव भक्ति के लक्षण सुनाए। तो महाप्रभु कहते हैं कृष्ण रतिर चिन्ह ए कैलु विवरण, कृष्ण प्रेमर चिन्ह ए वे शून सनातन। ये कृष्ण ये भाव के लक्षण मैंने सुना दिए है, अभी आप थोड़ा प्रेम के लक्षण सुनो। यार चित्ते कृष्ण प्रेमा करो ये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञह ना भूजाए। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो मुद्राएं हैं, उसके जो भाव है, वो हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर होते हैं। एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति उस प्रेम को कभी भी नहीं समझ सकता। क्यों ये प्रेम के बारे में हमें जानना चाहिए? क्योंकि आगे चल के अंत्यलीला में महाप्रभु इस प्रकार से कुछ कृतियां करेंगे जो प्रेम के स्तर पर होंगी, तो हम लोग विचलित नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, क्योंकि ये प्रेम का स्तर है, उस स्तर पर सब कुछ संभव होता है। क्या क्या हो सकता है? एवं मृत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च हसती अथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। क्या होता है? एवं व्रत, जिसने इस प्रकार के नाम का व्रत लिया हुआ है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, वो अपने प्रिय व्यक्ति भगवान का नाम का कीर्तन करता है। जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च, उसमें उसके प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हो गया है, और उच्च स्वर से क्या कहता है? हसती, या तो वो हंसता है कभी कभी, या क्या होता है? रोदिति, या फिर रोता है, या रौती, या फिर विचलित हो जाता है। गायति, वो गायन करना प्रारंभ करता है। उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, लोगों को वो विचार नहीं करता लोग क्या सोचेंगे, और इस प्रकार से नृत्य भी करना प्रारंभ कर देता है। तो ये है गाढ़ प्रेम के लक्षण। और ये तो महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंदे का उदाहरण दिया। अभी जो प्रेम है वो प्रेम भी जो है वो उसके भी कुछ स्तर बताए गए हैं, उसके 8 स्तर बताए जाते हैं। ये श्लोक संख्या 42 और 43 में इसका वर्णन आता है। प्रेमाक्रमे बाड़ी होए स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होए। तो प्रेम कैसे बढ़ता है? प्रेम से बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय, उसके बाद राग अनुराग भाव, और उसके पश्चात है महाभाव। तो ये सबसे ऊंचा स्तर जिसे कहा जाता है, ये है महाभाव। और कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि ये जो भाव महाभाव तक कैसे समझना चाहिए। जो प्रेम है वो बीज आप मानिए, और इसके आगे गणना प्रारंभ कर सकते हैं। बीज इक्षु रस गुड़ तबे खंड सार शर्करा सीता मिश्री शुद्ध मिश्री आर। तो जो प्रेम है वो बीज के समान है, उसके पश्चात स्नेह जो है वो इक्षु यानी गन्ने के समान है, मान जो है वो गन्ने के रस के समान है, प्रणय जो है वो गुड़ के समान है, राग जो है वो खंडसार मतलब जिसे खड़ी शक्कर हम लोग कहते हैं ना, खंडसार, वो चीनी के समान है। उसके बाद है शर्करा मतलब उसकी शक्कर बनती है, उसके बाद सीता मिश्री मतलब मिश्री, और उसके पश्चात है शुद्ध मिश्री। तो इस प्रकार से जो है वो आपने देखा होगा, गन्ने के यदि हम लोग गन्ने से साखर बनाने के कारखाने में जब जाते हैं तब बॉईल किया जाता है, उसे उबाला जाता है, उबाल के उबालते उबालते जो है वो शुद्ध बनते जाता है, और सबसे आखिर में सबसे शुद्ध वस्तु प्राप्त होती है। यहाँ ये छे क्रमे निर्मल क्रमे बाड़े स्वाद रति प्रेमादि रतय छे बाड़े आस्वाद। रति जो प्रेम वहां से जब आगे महाभाव तक जाता है, तो इस प्रकार से क्रम क्रम में वो शुद्ध और शुद्धता बढ़ती जाती है, और उसका स्वाद भी जो है वो और बढ़ता जाता है। और इसमें भी पांच जो है हम लोग प्रकार देखते हैं ना, अधिकारा अधिकारी भेदेरति पंच प्रकार, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आर। तो ये जो पांच रस जो हमने देखे थे, जो महाप्रभु ने पहले भी समझाए थे रूप गोस्वामी को भी और सनातन गोस्वामी को भी, ये पांच रस है। यही पंच स्थायी भाव हय पंच रस, ये रसे भक्त सुखी कृष्ण हय वश। तो ये जो पांच स्थायी भाव होते हैं, इन्हें जो पांच रस है ये पांच स्थायी भाव है और जिनके द्वारा भक्त रस का आस्वादन करते हैं और कृष्ण को आनंद प्रदान करने का प्रयास करते हैं और वो स्वयं भी आनंदी होते हैं और जिससे कृष्ण उनके वश में आ जाते हैं। प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मिलने कृष्ण भक्ति रस रूपे पाय परिणामे। जो स्थायी भाव है ये पांच, इसमें यदि अन्य कोई सामग्री यदि जब मिल जाती है तब इनका आस्वादन और बढ़ने लगता है। कौन सी सामग्री मिलती है? चार चीजें हैं जो और इसका रस बढ़ाती है। विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी स्थायी भाव रस है यही चारी मिली। जब ये चार वस्तुएं मिल जाती है, क्या है? भाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी। ये चार भाव जब विशेष रूप से इन पांच रसों में जो स्थायी भाव है उनमें जब मिल जाते हैं तो उनका आस्वादन और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? उदाहरण देते हैं, दधी एन खंड मरीच कर्पूर मिलने रसालाख्य रस है अपूर्व आस्वादने। दधी, जिस प्रकार से दही के अंदर आप यदि चीनी मिलाओ, मरीच यानी काली मिर्च डालो और कर्पूर यदि डालते हैं तो इस प्रकार से ये जो पदार्थ बनता है उसका नाम है रसाला। तो ये रसाला उसका आस्वादन और अधिक होता है। इसी प्रकार से जो पांच स्थायी भाव है उसमें यदि ये चार दूसरे भाव यदि जोड़ दिया जाए तो उसका आस्वादन और भी बहुत अधिक होता है। और ये जो इनका जब मिश्रण होता है तो उसका विस्तार से वर्णन महाप्रभु करते हैं, लेकिन हमें उतना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं बाद में उसे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं सीधा कृष्ण और राधारानी इनके गुणगान के ऊपर, श्लोक संख्या 66 के आगे। तो यदि आपको कोई पूछे आपकी आपके चहिते हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका कौन है, तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि हमारा ये नायक है, ये फिल्म का हीरो है, ये फिल्म की हीरोइन, ये हमारे फेवरेट है। तो यहाँ पर बताया गया है, व्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि, नायिका शिरोमणि राधा ठाकुरानी। तो नायक शिरोमणि कौन है? व्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ये है हमारे हीरो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और नायिका शिरोमणि कौन है? ये है श्रीमती राधिका। तो इस प्रकार से जो है वो इनका वर्णन होता है। अनंत कृष्ण गुण 64 प्रदान एक एक गुण शून्य जुड़ाय भक्त काण। तो महाप्रभु अभी कहते हैं कि कृष्ण के तो अनंत गुण है लेकिन उसमें से भी मैं आपको 64 गुण बताता हूं। तो इस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन करते हैं। तो हम 64 गुण तो नहीं सुनाएंगे लेकिन बताते हैं कि श्लोक संख्या 70 से लेके 78 तक 50 गुणों का वर्णन हुआ है भगवान श्री कृष्ण के। तो 70 से लेके 78 तक जो 50 गुण बताए हैं वो 50 गुण बद्ध जीव में भी कुछ हद तक पाए जा सकते हैं। बद्ध जीव का मतलब है ब्रह्मा जी तक। तो ब्रह्मा जी में भी है जो कुछ हद तक ये 50 गुण पाए जा सकते हैं। हम में भी कुछ हद तक होते हैं, कुछ मात्रा में, कुछ 0.1%, 0.2 इस प्रकार से थोड़े मात्रा में हमारे अंदर भी होते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 79 से लेके 81 तक 79-81 इसमें 5 और 5 ऐसे 10 गुण और बताते हैं। तो जो पहले 5 गुण हैं वो शिवजी वगैरह आदि देवताओं में भी पाए जाते हैं और जो बाद वाले 5 हैं वो नारायण या भगवान के विस्तारित अंश होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो पहले 50 और दूसरे 10 हो जाते हैं 60। और उसके पश्चात जो आगे 4 की गणना करते हैं जो श्लोक संख्या 82 और 83 82-83 में जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो 64 गुण में 50 जो है वो बद्ध जीवों में भी पाए जाते हैं। जो अगले 5 है मतलब 55 गुण शिवजी आदि तक पाए जाते हैं। उसके पश्चात जो और 5 जुड़े जाएंगे तो ये जो 60 है वो अन्य भगवान के अवतार नारायण आदि में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 4 वर्णन करने जा रहे हैं वो केवल और केवल व्रजेंद्र नंदन कृष्ण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन से है वो चार गुण? सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। तो सर्वप्रथम है उनका लीला, तो भगवान श्री कृष्ण की सर्व अद्भुत चमत्कार लीला। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं ये है उनका पहला, इसे कहते हैं लीला माधुरी। दूसरा है अतुल्य माधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, जो अपने हमेशा प्रिय भक्तों से घिरे हुए रहते हैं गोप गोपियां, तो यह है उनकी परिकर माधुरी। त्रि जगन मानस आकर्षी मुरली कलकूजित, तीनों जगत को आकर्षित करने वाली उनकी मुरली, ये तीसरा है उनकी वेणु माधुरी। और असमोर्ध्व रूपश्री विस्मापित चराचर, असमोर्ध्व रूप ये है भगवान की चौथी रूप माधुरी। तो लीला माधुरी, परिकर माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये चार वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण में सब केवल पाई जाती है परिपूर्ण मात्रा में। तो इस प्रकार से 64 गुणों का वर्णन किया, और अभी महाप्रभु श्रीमती राधारानी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अनंत गुण श्री राधिकार पंचिश प्रधान एई गुणेर वश हय कृष्ण भगवान। श्रीमती राधारानी में भी अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनके मैं आपको केवल 25 गुण बताऊंगा। तो श्लोक संख्या 86 से 91 उसमें जो है श्रीमती राधारानी के 25 गुणों का वर्णन हमें मिलता है। तो ये 25 गुण आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से समझाए गए कि राधारानी में कितने कितने गुण होते हैं। संक्षेपे कहिलु एई प्रयोजन विवरण पंचम पुरुषार्थ यही कृष्ण प्रेम धन। ये कृष्ण प्रेम धन जो है वो हमारे लिए पंचम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है, इसके भी आगे इसे कहते हैं पुरुषार्थ शिरोमणि पंचम पुरुषार्थ, इसे कहते हैं प्रयोजन। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है हे सनातन गोस्वामी। और पूर्वे प्रयागयामी रसेर विचारे तुम्हार भाई रूपे कैलू शक्ति संचारे। प्रयाग में मैंने तुम्हारे भाई रूप को भी जो है वो इस प्रकार से रसों का बारे में ज्ञान दिया था। अभी महाप्रभु सनातन गोस्वामी को चार आज्ञा प्रदान करते हैं श्लोक संख्या 103 और 104 में। ये चार आज्ञाएं कौन सी है? तुमी ह करी ह भक्ति शास्त्रेर प्रचार मथुराय लुप्त तीर्थे करी ह उद्धार वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार भक्ति स्मृति शास्त्र करी कोरी ह प्रचार। क्या है चार आज्ञाएं? तुमी करी ह भक्ति शास्त्रेर प्रचार, भक्ति के शास्त्रों का प्रचार करो। मथुराय लुप्त तीर्थे करी ह उद्धार, मथुरा जैसे जो लुप्त तीर्थ है राधा कुंड श्याम कुंड आदि जो लुप्त हुए हैं उनका उद्धार करो। तो सबसे पहला है भक्ति के शास्त्रों का प्रचार, दूसरा है लुप्त तीर्थों का उद्धार, तीसरा है वृंदावने कृष्ण सेवा। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए उसकी प्रतिष्ठा करो। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन मंदिर की सेवा वहां पर प्रारंभ की और उसकी प्रतिष्ठा की, और रूप गोस्वामी इन्होंने जो है वो राधा गोविंद मंदिर की वहां पर जो है वो पूजा विधि सबको सिखाई। ये होगी तीन आज्ञाएं, और चौथा आज्ञा है वैष्णव आचार। आप थोड़ा वैष्णव आचार के बारे में भी लिखिए कि किस प्रकार से एक वैष्णव का आचार होना चाहिए और उन्होंने भक्ति में कैसे अग्रसर होना चाहिए उसके बारे में भी उनके मदद के लिए आप कुछ लिखिए, ऐसा आदेश महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दिए। और उसके पश्चात जो है वो संपूर्ण रूप से युक्त वैराग्य का भी ज्ञान प्रदान किया। भगवान को कौन भक्त प्रिय होता है ये भी उन्होंने बताया। भगवद गीता के 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है भक्ति योग, उसके श्लोक संख्या 13 से लेकर के 20 तक, 12वां अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक कौन व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है, ये सारे श्लोक महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यहाँ पर सुनाते हैं। ये तो बताने के पश्चात और भी महाप्रभु ने कई सारे उपदेश दिए, उनका इस ग्रंथ में वर्णन नहीं है लेकिन सनातन गोस्वामी ने अपने दूसरे ग्रंथों में इसका वर्णन किया हुआ है। जैसे भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं जो भौतिक संसार के लोगों के मन में कुछ संशय उत्पन्न करती है, जैसे उनकी मौसल लीला है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का इस धरा से अंतर्धान होना है, ये सारी लीलाओं के बारे में जो भी भ्रम है उन सारे भ्रमों को दूर करके जो भागवत सिद्धांत के आधार पर जो वास्तविक भगवान की लीला के पीछे कारण था, उस कारण को महाप्रभु ने स्थापित किया। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कहते हैं कि मैं तो इतना नीच हूं, ये ज्ञान ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल पाया, वो ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया है, तो आप मुझे थोड़ा वर दीजिए कि ये मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए तो ये फायदा है, नहीं तो ये केवल कान तक ही सीमित रह जाएगा। मुई ये शिखाइलू तोरे स्फुरुक सकल, यही तुम्हारा वर है ते हबे मोर बल। आप मुझे ऐसा वर देंगे तो मुझे बल प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा वर देंगे आप मुझे? यही मोर शिखाइलू तोरे स्फुरुक सकल, आपने जो भी सिखाया, मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें सदैव स्फुरित रहे, ऐसा आप मुझे वर दो। और महाप्रभु फिर उनके सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, एबे सब स्फुरुक तुम्हारे, ये सब तुम्हें हमेशा स्फुरित रहे, ऐसा महाप्रभु वर प्रदान करते हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये सारी महाप्रभु का जो प्रयोजन की शिक्षाएं उसे सुनते हैं, प्रभुर उपदेशामृत सुने ये जन अचिरात मिलय तारे कृष्ण प्रेम धन, ये महाप्रभु ने जो उपदेश रूपी अमृत दिया हुआ है वो यदि कोई व्यक्ति सुनता है तो क्या होगा, अचिरात मिलय तारे कृष्ण प्रेम धन, बहुत जल्दी उसे कृष्ण प्रेम का धन जो है वो अवश्य प्राप्ति हो जाएगा। इससे हमारा 23वां अध्याय प्रयोजन वो समाप्त हो जाता है और उसका पहला श्लोक हम लोग लेंगे। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा अमृतम अत्युदार आपामरम यो विततार गौरह कृष्णो जनेभ्य तम अहम प्रपद्ये, तम अहम प्रपद्ये, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं शरण जाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? चिराद अदत्तम, बहुत समय से, चिराद मतलब बहुत चीर काल से, जो अदत्तम जो किसी ने अभी तक नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, निज गुप्त वित्तम, अपनी निज संपत्ति, कौन सी निज संपत्ति, स्वप्रेम नाम अमृत, अपने स्वयं का जो प्रेम है भगवत प्रेम, वो प्रेम और जो भगवान के नाम का अमृत है वो अभी तक किसी ने प्रदान नहीं किया था, वो अति उदार है, वो बहुत उदार हो करके कृष्णो जनेभ्यः सारे जनों तक क्या किया, वितार बाटा, और किन किन जनों तक बाटा, आपामरम, कितने सारे, आपामरम का अर्थ है सबसे अधम व्यक्तियों तक बांटा, जो बहुत काल से अभी तक नहीं बांटा गया था वो भगवत प्रेम और कृष्ण नाम का अमृत सारे लोगों को और खास करके जो सबसे अधम है उन लोगों तक भी जिन्होंने बांटा, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। पुनः एक बार एक श्लोक देखते हैं, अभी अर्थ समझ में आ गया है। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा अमृतम अत्युदार आपामरम यो विततार गौरह कृष्णो जनेभ्य तम अहम प्रपद्ये। तो यहाँ पर ये हमारा 23वां अध्याय समाप्त हो जाता है और फिर सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं। सनातन गोस्वामी ने यह प्रश्न पूछा कि पूर्वे सुनी या छो तुम्हें सार्वभौम स्थाने एक श्लोकेर 18 अर्थ कैरा छ व्याख्याने, मैंने सुना है कि आपने मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार किया था उस समय आपने 18 आत्माराम इस श्लोक के 18 अर्थ बताए थे, आपको याद है? सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार मध्य लीला के 6 अध्याय में हुआ था और जब संपूर्ण सार्वभौम भट्टाचार्य परिवर्तित हो गए तो महाप्रभु भट्टाचार्य को कहते हैं कि आत्माराम पर्यंत लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु से कि आप ये इसकी व्याख्या कीजिए आत्माराम श्लोक की, तो महाप्रभु कहते हैं कि पहले आप सुनाइए और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य आपको याद है कितने प्रकार की व्याख्याएं करते हैं, 9 प्रकार से व्याख्या करते हैं और फिर महाप्रभु उन अर्थों को बिल्कुल स्पर्श किए बिना 18 अर्थ बताते हैं उस श्लोक के। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आपने 18 अर्थ बताए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, उनको सुनने की मेरी अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, थोड़ा उसके बारे में सुनाइए क्या है 18 अर्थ। तो ये हमारा अध्याय ये शुरू होता है 24, इसका शीर्षक है, क्या है इसका शीर्षक, 61 आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं महाप्रभु ने की। तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 व्याख्याएं महाप्रभु ने की थी, तो वो 18 तो वहां पर बताई नहीं गई थी कि कैसे महाप्रभु ने 18 की, केवल इतना इंगित किया था कि 18 अलग से की और जो 9 सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया था उनको स्पर्श भी नहीं किया था महाप्रभु ने, इतना केवल बताया था। तो अभी महाप्रभु एक नहीं दो नहीं 18 नहीं 61 अर्थ बताते हैं सनातन गोस्वामी को कि यह 61 प्रकार से जो है वो परिभाषा हो सकती है। लेकिन महाप्रभु सबसे पहले कहते हैं कि देखो मैं एक पागल व्यक्ति हूं, वो सार्वभौम भट्टाचार्य दूसरा पागल है और एक पागल ने दूसरे पागल को बताया और उसने उसको सत्य मान लिया, तो मुझे तो अभी कुछ स्मरण नहीं है मैंने क्या कहा था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी संगति में हूं तो मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूं। और फिर महाप्रभु बताना प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं एकादश पद यही श्लोके सुनिर्मल पृथक नाना अर्थ पद एक करे झलमल। ये जो आत्माराम श्लोक है आप सब जानते ही होंगे, ये आत्माराम श्लोक कौन सा है, ये आत्माराम श्लोक ये आता है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है, इसे सुप्रसिद्ध आत्माराम श्लोक कहा जाता है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिहि। ये श्लोक है और महाप्रभु कहते हैं कि एकादश पद ए श्लोक सुनिर्मल, इसमें 11 पद है। आत्मा रामः च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिहि, तो ये 11 पद इसमें आते हैं। और पृथक नाना अर्थ पदे करे झलमल, इसके अलग 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 इन 11 शब्दों के अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो कई सारा व्याकरण इसका भी ज्ञान महाप्रभु यहां पर लगाते हैं और सनातन गोस्वामी को समझाते हैं विस्तार से। तो यदि मैं आपको ये सारा व्याकरण से सारे 61 अर्थ यदि समझाना प्रारंभ करूं तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल चेंज कर देंगे क्योंकि ये इतना इतना विस्तार से जो है वो संपूर्ण ग्रामर संपूर्ण व्याकरण के दृष्टिकोण से पाणिनि का सूत्र बताते हैं। च शब्द के 7 अर्थ होते हैं, अपि शब्द के भी 7 अर्थ होते हैं, कौन सा अर्थ कहाँ पे लगाया जाएगा तो उसका कौन सा अर्थ प्रकाशित होगा, ये बहुत विस्तार से महाप्रभु दिए है। तो जिसको थोड़ी व्याकरण में रुचि है वो इसको विस्तार से पढ़ सकता है। तो मैंने एक व्याकरण के पंडित को भी दिया था, उसे भी ये अर्थ समझ में नहीं आए थे। तो ये ऐसे अर्थ हैं, केवल हम लोग इतना देखेंगे कि कितने कितने अर्थ महाप्रभु ने कहां कहां पर दिए हैं। तो सर्वप्रथम श्लोक संख्या 11 से 70, इसमें जो है ये केवल जो 11 शब्द आते हैं उनके अलग अलग परिभाषाएं महाप्रभु बताते हैं। तो जो आत्माराम है उसके 7 अर्थ होते हैं, च शब्द के 7 अर्थ है, अपि के अलग से 7 अर्थ है और उन सबका अलग अलग शब्दकोश, निरुक्त शब्दकोश, पाणिनि व्याकरण के नियम, यहां से महाप्रभु बताते हैं 11 से 70वें श्लोक में ये 11 शब्दों के अलग अलग अर्थ। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 71 से लेकर 106 तक महाप्रभु केवल परिभाषाएं देते हैं, मतलब संकेत बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, भक्ति क्या है, साधन क्या होता है, सिद्धि क्या है, साधनों के प्रकार क्या है, भक्ति के प्रकार क्या है, इन सब की परिभाषा बताते हैं। क्योंकि ये 11 शब्दों के अलग अलग अर्थ और ये अलग अलग साधन, इन सबको जब जोड़ दिया जाएगा तब अलग अर्थ प्रकाशित होगा। तो बहुत सुंदर है, समझने में भी बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे नया अर्थ प्रकट हो रहा है। तो हर एक शब्द के जब अलग अलग अर्थ हम सुनते हैं तो और भी जो है वो प्रकाश फैलता है इस श्लोक का। तो श्लोक संख्या 107 से लेकर के 153 107 to 153 उसमें ज्ञान मार्ग के उपासक महाप्रभु बताते हैं आत्मारामों को और उसमें 7 अर्थ बताते हैं आत्माराम श्लोक के। तो ये हो गए पहले 7 अर्थ। उसके पश्चात श्लोक संख्या 154 से लेकर 164 तक अंतर्यामी उपासक के बारे में बताते हैं, जो परमात्मा को उपासना के रूप में देखते हैं, उसमें 6 अर्थ इस श्लोक के महाप्रभु सुना देते हैं। उसके पश्चात 165 से लेकर के 220 श्लोक संख्या तक आत्मा शब्द के अलग अलग 10 अर्थ केवल बताते हैं। आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा के ऐसे विभिन्न अर्थ 10 अर्थ महाप्रभु सुनाते हैं केवल आत्मा शब्द के। और उससे फिर यह संपूर्ण श्लोक के 10 अर्थ हो जाते हैं। और उसके पश्चात 221 से लेकर 283 तक जो च और जो अपि शब्द है, आत्मा रामश च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, तो च और अपि इनके अलग अलग अर्थ बनाकर 3 व्याख्याएं इस श्लोक की करते हैं, और उसमें जो निर्ग्रंथ शब्द आता है उसको यदि हम अलग दृष्टिकोण से समझेंगे, निर्ग्रंथ शब्द कहे तबे व्याध निर्धन साधु संगे सेह करे श्री कृष्ण भजन। निर्ग्रंथ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो व्याध होगा और दूसरा हो सकता है निर्धन। निर्ग्रंथ मतलब जिसके का कुछ धन भी नहीं है उसे भी निर्ग्रंथ कहा जाता है, और जो व्याध यानी जो शिकारी होता है उसे भी जो है वो निर्ग्रंथ कहा जाता है। साधु संग सेह करे श्री कृष्ण भजन, साधु के संगति में ऐसा शिकारी व्यक्ति या ऐसा निर्धन व्यक्ति भी आत्माराम बन सकता है, भगवान की सेवा में लग सकता है, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। और यहाँ पर महाप्रभु मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ऐसा कहते हैं। तो ये 221 से लेकर 283 जो तीन अर्थ है उसमें महाप्रभु निर्ग्रंथ शब्द की परिभाषा देते हुए मृगारी की कथा सनातन गोस्वामी को सिखाते हैं। तो मृगारी की कथा हम सब जानते हैं कि किस महाप्रभु कहते हैं कि ये सबसे बड़ी कथा है जिससे हम लोग भक्त के संगति की महिमा का वर्णन कर सकते हैं, और उसके लिए ये कथा यहाँ पर आती है। तो हमने अभी तक मृगारी की कथा सुनी होगी कहीं कहीं पर अलग अलग प्रवक्ताओं से, या हमने कभी पढ़ी भी होगी, लेकिन ये हमें यहाँ पर पता चलता है कि महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को आत्माराम शब्द के अलग अलग अर्थ बता रहे थे उसमें निर्ग्रंथ शब्द की व्याख्या करते हुए जो है वो इस शिकारी की कहानी महाप्रभु सुनाते हैं। तो कौन था, तो एक बार नारद मुनि इस प्रकार से नारायण के वैकुंठ धाम से दर्शन करके आ रहे थे, और प्रयाग में जब स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में जा रहे होते हैं उस समय वो देखते हैं कि कई सारे पशु पक्षी जो है वो अधमरे मरे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि पेड़ के पीछे एक बहुत काला कलूटा व्यक्ति जिसकी आंखें लाल है उसका वर्णन किया गया है, उसे देखते हैं, और वो देखते हैं कि शायद यही व्यक्ति होगा जो मार रहा है, अधमरा करके छोड़ रहा है। तो नारद मुनि धीरे से उसके पास जाते हैं, और जब जाते हैं तो क्या होता है कि सारे पशु पक्षी यहाँ वहां इधर उधर भाग जाते हैं। तो वह व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध से नारद मुनि को गाली देना चाहता है। क्रोध हया मृगारी गाली दी ते चाय, नारद प्रभाव मुखे गाली नहीं आए। गाली देना चाहता है लेकिन नारद मुनि वहां पर तो उनके प्रभाव से गाली नहीं निकल रही है। तो आपको जैसे मैंने पहले भी होमवर्क दिया था कि आप इस प्रकार से कोई भी पात्र में उसमें से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं उसके आप कुछ वर्णन कर सकते हैं। तो ये आप संपूर्ण लीला यदि श्लोकों से पढ़ेंगे तो इसमें कई सारी शिक्षाएं हमें मिलती है। तो शुद्ध भक्ति के संग में आते हैं तो उसके प्रभाव से ही हमारे मुख से गंदी बातें नहीं निकलती है, ये है इसका एक प्रभाव। तो ऐसे कई सारी शिक्षाएं आप ले सकते हैं, मैंने एक इंगित करा दिया आपको। और फिर उसके पश्चात नारद मुनि कहते कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, तो कहता है कि हमारा तो ये पेशा से चलते आ रहा है, मेरा नाम मृगारी है। अर्धमार जीव यदि धड़पड़ करे तबे ता आनंद मोर बाढ़े अंतरे, जैसे मैं जब देखता हूँ जीवों को अर्ध मारा हुआ तब मेरे हृदय का आनंद बढ़ता है। देखो कैसा आसुरी आनंद लेते हैं लोग। तो नारद मुनि फिर उसे समझाते हैं कि भाई मुझे एक दान दो। मृगारी कहता है आप जो मांगेंगे, आप साधु है आपको दे दूंगा, बोलो मृग चर्म चाहिए कि व्याघ्र की छाल चाहिए। नारद मुनि कहते भाई ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूं, मुझे दान केवल यह दो कि इन प्राणियों को तू आधा मार रहा है ना, इनको पूरा मार दे। अरे ऐसा कैसे, आप कहेंगे ऐसा कैसे। तो ये नारद मुनि के अलग अलग प्रचार के टेक्निक्स है। आप संपूर्ण श्रीमद् भागवतम यदि खोल के देखेंगे तो नारद मुनि ने अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया है लोगों को प्रचार करने के लिए। जैसे हरियश्व और शवलाश्व थे, उनको केवल उन्होंने पहेलियां पूछी वो भक्त बन गए। नलकुवेर मणिग्रीव इनको शाप दे दिया वो भक्त बन गए। तो मुर्गारी को उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब आज्ञा दी आप इसे पूरा मारो, तो मुर्गारी परेशान हो जाता है ऐसा पहला व्यक्ति मुझे संसार में मिला है जो मुझे कह रहा है पूरा मारो, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा। तो नारद मुनि बताते हैं देखो तुम्हारा ये पेशा है कि प्राणियों को मारना यदि तुम शिकारी हो तो लेकिन ये आधमारा करके उनको जो पीड़ा तू जानबूझ के पहुंचा रहा है और उसमें आनंद ले रहा है उसमें तुझे कई सारे नरकों में जाना पड़ेगा और इतने कई सारे जन गंवाने पड़ेंगे, इसकी मुझे चिंता हो रही है। तो वो कहता है कि ठीक है अभी आप बताइए मैं इसे छोड़ दूं मैं क्या करूं। नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है आप तुम्हारा धनुष तोड़ दो। वो कहता है कि अरे ये तो मेरा उपजीविका का सबसे बड़ा साधन है, मैं इसे कैसे छोड़ूं। नारद मुनि कहते उसकी चिंता तू मत करो, मैं तुम्हारी उपजीविका का प्रबंध कर दूंगा, तुम्हें खाने पीने की चिंता है ना वो मैं देख लूंगा। और क्या करना है, नारद मुनि बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि आप तुलसी की सेवा करो, तुलसी की परिक्रमा करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये तीन आज्ञाएं देते हैं। तुलसी परिक्रमा, तुलसी पूजा या तुलसी जल अर्पण करना आदि, और बताते हैं भगवान नाम का जप वो करना है। तो और वहां से चले जाते हैं। तो फिर इस प्रकार से वो घर पे जाता है, मृगारी अपनी पत्नी को भी कहता है कि आज से हम लोग सब छोड़ रहे हैं। वो दान धर्म कर देता है सबको और केवल अपने कुछ वस्त्र होते हैं उनको लेके तपस्या के लिए निकल पड़ता है नदी किनारे। तो सारे गांव वाले जब सुन लेते हैं कि ये मृगारी, ये शिकारी, ये अभी इसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया है, तो सारे लोग अपने कुछ जो है वो भिक्षा जाके उनको प्रदान करते हैं। और ऐसा बताया गया है 10-20 लोगों को पूरी होगी इतनी भिक्षा वो प्रदान करते हैं। तो वो भी वहां पर फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, उनको तो इतना नहीं चाहिए, तो वो भी दूसरों को बांटना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक नारद मुनि और पर्वत मुनि उनके मित्र वो आकाश से उड़ते जा रहे थे। नारद मुनि कहते मेरा एक शिष्य रहता है यहाँ पर, चलो मिल के आते हैं। तो फिर पर्वत मुनि कहते चलो मिलेंगे। तो दोनों फिर इस प्रकार से वहां पर आ जाते हैं जहां पर मुर्गारी था। और वहां पर जब जाते हैं तो मुर्गारी दूर से ही देखता है और ऐसा ऐसा किसी अजीबोगरीब तरीके से भागता हुआ जाता है। पिप्पली कारे देखिया, क्यों, क्या क्या हुआ? क्योंकि उसने वहां पर कुछ चींटियां देखी। और इस प्रकार से सारी चींटियों को दूर करता है, एक वस्त्र डालता है और वहां पर दंडवत करता है। तो पर्वत मुनि कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये ठीक से चल भी नहीं रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है? तो फिर बाद में पता चलता है कि वो अभी उसमें इतना परिवर्तन आ गया है कि वो अभी इन चींटियों को भी मरना नहीं चाहता है। तो देखिए वही मृगारी जो पहले पशु पक्षियों को प्राणियों को अधमरा करके छोड़ता था, वही अभी चींटियों को भी नहीं मार रहा है। तो इतना परिवर्तन आ सकता है किसी के जीवन में यदि कोई व्यक्ति केवल शुद्ध भक्तों का संग करे। तो महाप्रभु कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के संग की महिमा ये कहानी हमें बताती है। तो इसमें से कई सारी शिक्षाएं आप निकाल सकते हैं, जैसे गुरु की आज्ञा का अच्छे से पालन करना, जैसे मुर्गारी ने उन्होंने आज्ञा दी धनुष तोड़ दो तो तुरंत तोड़ दिया, और उनके जीवन में परिवर्तन होना, तो वो परिवर्तन क्या हम अनुभव कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्यों को हम लोग देख सकते हैं, उनके जीवन पहले क्या थे अभी परिवर्तन हुए हैं। हम हमारे स्वयं के जीवन में देख सकते हैं हम पहले कौन थे अब आज कौन हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन पाया जा सकता है। तो ये यहाँ तक हो जाते हैं 7, 6, 10 और 3, यानी टोटल मिला के 26 आत्माराम शब्द के अर्थ हो जाते हैं। और इसके पश्चात श्लोक संख्या 284 से लेकर 294 294, इसमें वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति इनके 8 प्रकार बताते हैं। और इनका इसे कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे मिला के महाप्रभु आत्माराम के 32 अर्थ बता दिए हैं। इसी केवल 10 श्लोकों में 284 से लेकर 294 तक वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति इनका जो अलग अलग लक्षण है उस एक लक्षण को दूसरे लक्षण के साथ मिलाएंगे तो इसके 32 अर्थ महाप्रभु बताते हैं। तो 26 पहले के और अभी के 32 हो जाते हैं 58 अर्थ। अभी बचते हैं 3 आखिरी, क्योंकि 61 अर्थ बताएंगे महाप्रभु। तो 295 से लेकर के 310 श्लोक संख्या तक आखिरी 3 अर्थ महाप्रभु बताते हैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु ने 61 अर्थ संपूर्ण इस आत्माराम श्लोक के सनातन गोस्वामी को सुना दिए। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी इन 61 अर्थों को सुने, सनातन गोस्वामी अचंभित हो जाते हैं। ये तो देखिए एक श्लोक का एक अर्थ हम लोग भाषांतरित करते हैं, ऐसा 61 अर्थ एक श्लोक के बनाना ये तो केवल भगवान स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं साक्षात ईश्वर तुम्हें व्रजेंद्र नंदन तुम्हार निश्वासे सर्व वेद प्रवर्तन। आप तो साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हो, क्योंकि आपकी सांस से तो वेद निकलता है। तो 61 अर्थ बताना आपके लिए इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। और आप तो है ये भागवत के आदि वक्ता है, भागवत आपके मुख से निकली हुई है और इसमें कोई समर्थ नहीं है इतना अर्थ बताने में। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे मेरी स्तुति मत करो, श्रीमद भागवत की स्तुति करो, श्रीमद भागवत कितना महान ग्रंथ है। ऐसा कह के महाप्रभु कई श्लोकों में श्रीमद भागवत की महिमा बताते हैं। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोई। हमें समझना चाहिए। क्या है श्रीमद् भागवत? कृष्ण तुल्य भागवत, ये भगवान श्री कृष्ण के ही तुल्य है। तो जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान से अभिन्न नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, ये सबसे विभु है, सबसे महान है और सारे अवतार सारे शक्तियां इनके आश्रय है, सर्व आश्रय। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोई, हर एक श्लोक हर एक अक्षर में जो है वो अनंत अर्थ छिपे हुए होते हैं। यदि आप आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे तो हमें इस श्लोक कई सारे श्लोकों के अलग 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 अर्थ प्रकाशित हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यदि थोड़ा सा संस्कृत जानने का प्रयास करेंगे, जैसे इस इन इन आत्माराम श्लोक के 61 अर्थ महाप्रभु ने केवल व्याकरण और उसके आधार पर ही बताए, तो थोड़ा सा यदि हम लोग व्याकरण पढ़े या थोड़ा संस्कृत जानने का प्रयास करें तो ऐसे अलग अलग अर्थ भी हमें प्रकाशित हो सकते हैं। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, ऐसा है श्रीमद् भागवत। और महाप्रभु भागवत की गुणगान करते हुए कहते हैं, कृष्ण स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनोदित। महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में ही वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम पुनः लौट गए धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म और ज्ञान को भगवान कृष्ण अपने साथ लेके गए, तो कलयुग के लिए क्या रहेगा? जो सब कुछ भगवान स्वयं चले जाएंगे, ज्ञान चले जाएगा, धर्म चला जाएगा, तो इस कलयुग के लिए क्या बचा? कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनोदित। अधुनो मतलब अभी अभी जो है वो, क्योंकि अभी अंधकार है तो यहाँ पे कुछ सूरज चाहिए जिससे प्रकाश फैल सके। और ये जो श्रीमद् भागवत है, पुराण अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूरज, अधुना उदित, ये सूर्य श्रीमद् भागवत रूपी अभी इसका उदय हुआ है। तो कृष्ण चले गए हैं और भागवत का उदय करा के गए हैं इस संसार के बद्ध जीवों के लिए। तो ये इसलिए कहा जाता है ये कृष्ण तुल्य भागवत, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए हर एक व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवत होना चाहिए और हमें नित्य रूप से श्रीमद् भागवत भी पढ़ना चाहिए। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। 12वें स्कंद में वर्णन आता है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत इष्यते, श्रीमद् भागवत को सारे वेदों का सार कहा जाता है। तद्रसामृत तृप्तस्य, जो व्यक्ति इसके रस में तृप्त हो जाता है, न अन्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, अन्य किसी चीजों में उसकी रति उत्पन्न नहीं होगी। तो यह है श्रीमद् भागवत, ऐसा ग्रंथ, ऐसा महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। और फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं, आपने तो मुझे जो चार आज्ञाएं दी थी उसमें एक आज्ञा थी वैष्णव आचार, जो सिद्धांत लिखने हैं वैष्णव आचार के बारे में, उसे मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो थोड़ा आप दिग्दर्शन, थोड़ा थोड़ा सूत्र रूप में भी थोड़ा कुछ बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 329 से लेकर के 345 तक महाप्रभु वैष्णव स्मृति यानी संपूर्ण वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। विस्तार से का अर्थ है कई सारे मुद्दों को बताते हैं सूत्रों के रूप में, जैसा वो गुरु आश्रय से लेकर के, गुरु का आश्रय कैसे लेना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या होते हैं, शिष्य के लक्षण क्या होते हैं, भक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनके साधन कौन कौन से होते हैं, और फिर दीक्षा क्या होती है, दीक्षा का विधि कैसे किया जाता है, जो हम विधि संपन्न करते हैं दीक्षा का, जिन भक्तों की दीक्षा हो गई है उन्हें पता है वो विधि क्या होता है, वो विधि भी कैसे होनी चाहिए, और जो भक्त है उसके प्रातः कर्म कैसे होने चाहिए, शौच के लिए कैसे जाना चाहिए, दातुन कैसे करना चाहिए, स्नान कैसे होना चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, एक भक्त ने भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, मंदिर में प्रणाम कैसे करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, तीर्थ यात्रा जाते समय क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए, और नाम में अपराध होते हैं उनसे कैसे दूर रहना चाहिए, सेवा अपराधों से कैसे दूर रहना चाहिए, प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद कैसे परोसना चाहिए, और एकादशी कैसे फॉलो करनी चाहिए, जन्माष्टमी रामनवमी आदि महोत्सव कैसे मनाने चाहिए, इन सारों को महाप्रभु सूत्र रूप से बताते हैं और इन सारों को विस्तार से सनातन गोस्वामी आगे चल के लिखते हैं, जिस ग्रंथ का नाम है जानते हैं आप, क्या है नाम, क्या है नाम? हाँ, इसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में सनातन गोस्वामी ने सारे जो महाप्रभु ने जो ने बताया था, इसे कहते हैं वैष्णव आचार संहिता, कि वैष्णव का बर्ताव किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यह है हरि भक्ति विलास। और ये जब सुन लेते हैं सनातन गोस्वामी, फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रभु, और महाप्रभु उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो भक्त इसे सुनता है, एत कहिलु प्रभुर सनातने प्रसाद यहार श्रवण चित्तेर खंडे अवसाद, एत कहिलु प्रभुर सनातने प्रसाद। महाप्रभु की सनातन के ऊपर जो कृपा हुई, इसका मैंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। यहार श्रवणे, जो इसे सुनता है, चित्तेर खंडे अवसाद, चित्त के सारे दुख, सारे शोक, सारा भय जो भी है, उसका सबका खंडन हो जाता है हमारे चित्त का। ये इतनी जो है वो कृपा है। तो हमने तो इसे केवल सूत्र रूप में केवल सुना दिया है। ये 61 की परिभाषा यदि आपको विस्तार से चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं अध्याय 24, इसका पहला श्लोक। क्या है पहला श्लोक? आत्मा रामेति पद्यार्क अर्थ अंशुन यह प्रकाशयन जगत तमो जहार अव्यात सह चैतन्य उदय अचल। बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, चैतन्य उदय अचल। जो चैतन्य महाप्रभु, वो किस प्रकार से है? पूर्व दिशा के समान है। तो जो महाप्रभु है उनकी तुलना की गई है पूर्व दिशा, दिशा के साथ तुलना की गई है। चैतन्य उदयात अचल, तो चैतन्य जो 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 सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उसे कहते हैं पूर्व। तो महाप्रभु पूर्व दिशा के समान है। और क्या कह, आत्मा रामेति पद्य अर्क, पद्य का अर्थ है श्लोक। जो आत्माराम श्लोक है वो सूर्य के समान है। तो महाप्रभु है पूर्व दिशा, आत्माराम श्लोक जो है वो है अर्क यानी सूर्य के समान। अर्थान अंशुन यह प्रकाशन, और जो सूरज की किरणें हैं वो महाप्रभु ने उसके बताए हुए अलग अलग अर्थ है। और जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है, अलग अलग किरणें आ जाती है तो प्रकाशित होता है, और प्रकाश से क्या हो जाता है? जगत तमो जहार, इस जगत का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। तो ऐसे महाप्रभु की जय हो, जो पूर्व दिशा के समान है, जिन्होंने आत्माराम श्लोक जो सूर्य के समान है उसके अलग अलग अर्थ बताए 61, जो प्रकाश के समान है, और जिस प्रकाश से जो है वो जगत तमो जहार, इस सारे जगत का अंधकार दूर हो गया है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। और यहाँ पर हमारा मध्य लीला का अध्याय 24 भी जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने 23 और 24 दो अध्यायों की चर्चा आज की है, और मध्य लीला का आखिरी अध्याय है हमारा, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो अभी महाप्रभु ने सनातन को तो शिक्षा दे दी, और रूप गोस्वामी पहले ही वृंदावन भेजे गए हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों अभी वृंदावन जाएंगे, तो सनातन गोस्वामी अभी वृंदावन जाएंगे, रूप गोस्वामी से मिलेंगे। तो ये दोनों वृंदावन में क्या क्या करते हैं, और महाप्रभु अभी भी वाराणसी में है, तो जो 17वें अध्याय में महाप्रभु वृंदावन गमन के लिए निकले है, अभी तक जगन्नाथपुरी लौटे नहीं है, तो ये उनका प्रति का प्रवास चल रहा है। रूप गोस्वामी को शिक्षा दे दी 19वें अध्याय में 10 दिन के लिए, और सनातन गोस्वामी को अभी शिक्षा दे दी है उन्होंने कुछ दिनों के लिए, और अभी वाराणसी में महाप्रभु रहेंगे और प्रकाशानंद सरस्वती आदि मायावादियों का जो है वो उद्धार करेंगे, और महाप्रभु उसके पश्चात जो है वो आगे जाएंगे। तो उसके आगे क्या होगा, यह यदि आपको सुनना है तो हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे हम कल ठीक शाम को 5:30 बजे। अभी हम देखते हैं जो आज का प्रश्न था हमारा, सीसीसी चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट में बहुत आसान प्रश्न था, कि प्रश्न यह है कि कौन से विष्णु व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। तो इसका जवाब, सही जवाब है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो जो अलग अलग विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, तो इसका एक बहुत सुंदर चित्र मैंने देखा था, यदि मुझे पुनः मिला तो मैं आपको दे दूंगा, जिसमें संपूर्ण आध्यात्मिक संसार कृष्ण गोलोक से लेकर के बद्ध जीवात्मा तक, तो कारणोदकशायी कारण सागर का जल कहाँ पर है और वहां से बागे फिर गर्भोदकशायी विष्णु कहाँ पे लेटे रहते हैं, उसके अंदर क्षीरोदक साई विष्णु कहाँ पर है, वो कमल की दंडी ब्रह्मा जी कहाँ पर बैठे हैं, आप आदि लीला का अध्याय 5 लेकर के और जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी अध्याय 20, तो इन दो अध्यायों को लेकर के वो चित्र आप स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बद्ध जीव हमारी सीमित बुद्धि से संपूर्ण समझ नहीं सकते कि वास्तव में चित्र क्या है, लेकिन यहाँ पर जो अंगित किया गया है उससे तो हमें समझता है कि सारे जीवों के व्यक्तिगत जो ईश्वर है वो क्षीरोदकशाही विष्णु, ये विष्णु है जो व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। तो सारे जीवों को भी एकत्रित परमात्मा होते हैं और सारे ब्रह्मांडों को भी एकत्रित परमात्मा होते हैं, ये अलग अलग विष्णु के स्वरूप है। तो ये अध्याय 2 से ये हमने प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार से यदि आपको और प्रश्न चाहिए तो हमारा चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं और इसके उत्तरों को आप ढूंढते रहिए, आपका अधिक से अच्छे से अध्ययन हो जाएगा और जो हमारे अध्याय हो रहे हैं इसे भी आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको और इसमें रस उत्पन्न हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।